Nyt tämä pitää provisioida. Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur का आविर्भाव तिथि आज ही के दिन ये अतिमत महापुरुष जगन्नाथपुरी में प्रवचन के अभी आता है दिखे यहाँ पर इधर आगे तो मना चले आ सकते इधर খোলাটা তো ইদার ও কোথায় গেল आज ही के दिन में जगन्नाथपुरी में श्री भक्ति विनोद ठाकुर के घर पर आज झुत कले पुरुषोत्तम में इन महापुरुष का जन्म हुआ। जन्म के समय में ही उनके श्री अंग में कोई सूता धागा नहीं, वो चिन्ह था। जैसे तिलक का चिन्ह होता, तिलक नहीं, हम लोग तिलक नहीं करेंगे तो भी तिलक का चिन्ह रहेगा, वैसे वो उपवीत नहीं था किंतु उपवीत के चिन्ह सब अंगों में और तिलक के द्वादश अंगों के चिन्ह भी अंगों में था। उनकी माता जी ने भक्ति विनोद ठाकुर को दिखलाया जी ये सब विलक्षण इसमें देख रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि आज हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हमारे कुल में एक कोई सिद्ध वैष्णव महापुरुष का आविर्भाव हुआ है, खूब अच्छी तरह से इसका पालन पोषण कर रहे और अन्न प्राशन के दिन जगन्नाथ जी का रथ उधर से जा रहा था, वहीं पर रुक गया, हाथियों को लगाया गया, नहीं चला और भक्ति विनोद ठाकुर ने इन नवजात शिशु को रथ पर चढ़ाकर और वहां जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर इसके मुख में दिया और उनका प्रसादी मालाएं इनके गले में दे दिया, बस अपने आप रथ चलता। सब लोग देकर के आश्चर्य हुए, यह बालक साधारण बालक है। भक्ति विनोद ठाकुर ने उनका नाम रख दिया विमला प्रसाद, विमला जी का ये प्रसाद। गुरु महाराज जी जब हम लोग ये पत्रिका भोज्य पत्रिका प्रकाशित हुई में, मैं आया था 47 में, 47 के फरवरी में, दिसंबर में शायद आया, उसके बाद ही ये पत्रिका आरंभ हुई और उसके बाद में विशाल रूप में परिक्रमा हो रही है। कार्तिक की परिक्रमाएं निकल रही है और ये पत्रिका भी ये आरंभ हो रही है। पहली पत्रिका में ही गुरु जी जब आरंभ किया तो इसका नाम रखा बैकुंठ वार्ता बह। वैकुंठ वार्ता बह मैंने जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोलोक बैकुंठ में है। बैकुंठ के अंतर्गत गोलोक वृंदावन में है और वहाँ जो जो कुछ बातें होती हैं वहाँ का वार्ता वहाँ से प्रेरणा करते हैं। कहाँ प्रेरणा करते हैं? इस जगत में, किनके पास में? अपने प्रिय जनों के पास। तो प्रियजन कौन है? तो उनके पास में वो वार्ता भेजते हैं और वो लोग वो वार्ता को लेकर के इस पत्रिका के माध्यम से जगत में प्रचार करते हैं। इसलिए ये जगत की वार्ताएं इसमें नहीं है, वैकुंठ जगत के संवाद इसमें है। इसलिए वैकुंठ वार्ता वह वह माने वहन करना, लेकर के रखना अपने अंदर। तो ये वैकुंठ की वार्ता इसमें है, इसलिए वैकुंठ वार्ता जगत की इसमें पूरी चीज। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले रखा विरह मांगल्य, गुरु वैष्णव की वंदना करके। कोई भी काम हो गुरु वैष्णव हरि गुरु वैष्णव तीनों की वंदना से आरंभ करना चाहिए, यही मंगलाचरण। मंगलाचरण किस लिए किया जाता है? किसी काम के पहले करने के पहले मंगल आचरण होता है, जो कि जिस काम को आरंभ करते हैं वो अंत तक सफल हो, जिसके लिए हम कर रहे हैं वो काम सफल हो, इसलिए ये मंगल आचरण। जैसे चैतन्य चैतामृत लिख रहे हैं तो उन्होंने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण क्या किया? वंदे हम श्री गुरु श्री सूत पद कमलम इत्यादि से लेकर के जयतां सुरतौ इत्यादि। इसलिए चैतन्य चैतामृत जो है जहां तक मैं लिखना चाहता हूँ वो संपन्न। किस लिए? हरि गुरु और वैष्णव तीनों प्रसन्न हो और जगत का कल्याण है, अपने लिए नहीं, तभी उसका मंगलाचरण। वैकुंठ की वार्ता जिसमें है, जिसको वहन करती है जो पत्रिका, उसके लिए मंगलाचरण की क्या जरूरत है? क्योंकि वहां से वो वार्ता भेज रहे हैं, अब इसको जगत में हम वितरण कर सके और जगत के लोग इसको ग्रहण कर सके, इसलिए मंगलाचरण की जरूरत है। तो मंगलाचरण में पहले कर रहे हैं। आज प्रचुर हर्ष और आनंदेर मध्य विषाद वेदनाई जागिया उचित। एक मान लिया ये लड़का है, उसकी शादी हो रही है, आनंद की बात है ना, और एक वर्ष पहले ही उसके पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है और पिताजी नहीं है, उसकी शादी हो रही है, तो पिताजी नहीं है इसके लिए क्या होगा? उनकी याद आएगी, आज उनकी छत्र छाया हमारे ऊपर है। ये तो हुआ विषाद, और हर्ष किस लिए? शादी हो रही है। आज इस वैकुंठ वार्ता का शुभारंभ कर रहे हैं, इसलिए आनंद है, किंतु कुछ विषाद है। क्यों? उसी को बतला रहे हैं, विषाद की वेदना। जहां पर अत्यंत अधिक प्रेम होता है जिस व्यक्ति के साथ में, उसके दो पहलू एक साथ में उठते हैं। यदि उसका मिलन है तो मिलन में विषाद की एक रेखा आती है, विप्रलम्ब, और विप्रलम्ब में मिलन की याद आती है। आदमी रोता किस लिए है? विरह अवस्था में उस व्यक्ति के गुणों को स्मरण करके, उस व्यक्ति को स्मरण करके आज के दिन में रोता है, तो मिलन की याद आती है, इसलिए वो रोता है। इसलिए रोने में मिलन की कुछ छाया है, और आनंद में भी जैसे गोपियों का कृष्ण से मिलन में भी विरह की छाया, कहीं योग न हो जाए। इसलिए वैष्णव के विरह और आविर्भाव, आविर्भाव और तिरोभाव दोनों एक तात्पर्य पर, जिसलिए उनका आविर्भाव होता है, तिरोभाव भी उन्हीं उनका उसी दिए होते जगत के कल्याण। क्यों विरह का कल्याण होगा, इसलिए कल्याण होगा, विरह में कल्याण इसलिए होगा कि विरह में मिलन की स्मृति आएगी। प्रभुपाद जी का विरह हो रहा है मतलब क्या, उनके दैनिक दिन चर्चा, उन्होंने जो जो कुछ कार्य किए हैं उनका स्मरण होगा। स्मरण होने से क्या होगा, जगत का कल्याण, जो जो उनका स्मरण करेंगे उनका कल्याण। इसलिए दोनों में एक ही ज्ञान है, आविर्भाव होता है जगत कल्याण के लिए और योग भी उसी के लिए होता है। देखो कितना सुंदर लिखते हैं, ये लेखनी कैसी है, इसलिए इसको पढ़ रहा हूं। हृदय वेदना, हृदय और उद्धराकित चेष्टा कर ले, हृदय की वेदना हृदय में और उद्ध बंद करते रखने की चेष्टा करने पर भी दीर्घ निश्वास तहां व्यक्त पर्याप्त है। कोई पानी गर्म हो रहा है और ढक्कन से उसको बंद कर दो तो क्या होगा, उसका वाष्प उठा करके उस ढक्कन को हटा करके उसमें से फस 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 करके उसकी वायु निकले। ठीक उसी प्रकार से हृदय की वेदना हृदय में और उत्तर रखने की चेष्टा करने से दीर्घ निश्वास, कोई आदमी अत्यंत दुखिया रो नहीं रहा है, दीर्घ लंबा समझोगे इसमें दुख, अरे आज मैं रो नहीं पा रहा हूं किंतु रोने के भाव को मैं बंद नहीं कर पा रहा, निश्वास वायु विरोधित और विक्षोभित हो या शब्द परिणत हो या चाहिए, वही निश्वास वायु शब्द का धारण कर से शब्द ही क्रंदन, उसी का नाम है। इसमें अलंकारिक भाषा इत्यादि सभी कुछ इसमें आते हैं, वही भाषा अस्फुट अर्धस्फुट कंठ रुद्ध और गदगद है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ज ज ग ग करते थे विरह में। तथापि अगुंठिता विरह वेदना, अगुंठिता मैंने क्या अगुणित मैंने उसको रुद्ध कर दिया है, वही विरह वेदना व्यक्त होने से ही किंचित प्रशमित हो जाए, कुछ कुछ कम जाती है। आदमी को दुख आया यदि रो दे खूब जोर से तो दुख कम जाएगा, या किसी से कह दे और न कहे न रोए न तो हृदय में एकदम फट जाएगा, वो मर जाएगा। इसलिए मैं गुरु पाद पद्म और उनके एकनिष्ठ सेवक ठाकुर श्रील नरहरि सेवा विग्रह प्रभु आदर्श जनित क्लेश लांछित लेखनी आज कंपित पदे धीरे धीरे मंथर गति से अग्रसर हूं। सर्वाकर्षण कृष्ण के ऊपर आकर्षण करिया, हृदय अवरुद्ध करिया, सबसे जगत में आकर्षक कृष्ण है और इसलिए उनका नाम कृष्ण, उनको भी जो हृदय में आकर्षण करके अवरुद्ध रख सकते थे या अवरुद्ध किया था, जो सर्वशक्तिमान भगवान को भी प्रियते पराभूत करिया, अपने प्रेम से उनको पराभूत कर दिया और पराभूत करके नई इच्छा होने पर भी अपनी इच्छा से दूसरों के हृदय में सेवकों के हृदय में स्फूर्ति कर दिया, ऐसा करने में समर्थ थी। क्या क्या समझा है?
जो सबसे विश्व में आकर्षित करने वाले कृष्ण हैं, आकर्षण, और उस कृष्ण को भी अपने प्रेम से, प्रेममयी सेवा से आकर्षण करके अपने हृदय में अवतीर्ण कर दिया, और उनकी कृष्ण की इच्छा नहीं होने पर भी अपनी इच्छा से अनुग्रह करके दूसरों के हृदय में उस कृष्ण को प्रेरित कर सकते हैं, करने में समर्पण करने में समर्थ हैं, जो हरि के, श्री हरि के समस्त गुणों के समाहरण करके अपने हृदय में रख करके निर्गुण ब्रह्मवादियों को वंचित किया करते हैं। माने क्या, निर्गुण ब्रह्मवादी में कोई गुण नहीं होता, इसलिए भगवान के जितने भी गुण होते हैं उनके भक्तों में होते हैं, इसलिए उन सब गुणों को अपने में रख लिया, कोई गुण बचा नहीं, इसलिए निर्विशेषवादी निर्विशेष हो गए, उनमें कोई भी गुण नहीं। वही गुरुपाद पद्मशील प्रभुपाद जगत गुरु रूपे चैतन्य वाणी और व्यास वाणी सार्थकता संपादन जन्म, चैतन्य वाणी और व्यास वाणी, चैतन्य महाप्रभु की वाणी ही व्यास की वाणी है, बल्कि व्यास की वाणी में जो कुछ नहीं है वो भी महाप्रभु के वाणी में, उसको उसी के लिए पुरुषोत्तम क्षेत्र में पूरी धाम में अवतीर्ण हुए थे। वेदों में भी ऐसा, पुराणों में ऐसा लिखा गया है कि पुरुषोत्तम में, पुरुषोत्तम के द्वारा पूरी क्षेत्र में महापुरुष का आविर्भाव होगा, इसकी सत्यता करने के लिए वो पूरी धाम में प्रकट हुए। जो मेरे जैसे विषयी धुरंधर दुर्दांत प्रकृति के पतिता धम को केश आकर्षण कर अपने पापन कज की धूलि के समान बनाया था, गुरुजी अपने लिए कह रहे हैं कि मैं कैसा हूं, विषयी धुरंधर दुर्दांत प्रकृति और पतित अधम, दीनता से करे है नहीं किंतु अपने को ऐसा ही समझते हैं, जैसे सनातन गोस्वामी अपने को समझते हैं ऐसे। यदि हम में कुछ गुण है तो ऐसा सोचने पर अभिमान होगा, और हमारे अंदर में कोई भी गुण नहीं है तो उसमें दीनता है, तो ये महापुरुष लोग ऐसा ही समझते हैं, और हम मूर्ख लोग अपने को महाभक्त समझते हैं, गुणी समझते हैं। तो वो कह रहे हैं हमारे जैसे व्यक्ति को, धुरंधर पतित को भी, जिन्होंने केश आकर्षण करके भगवान के चरण में लगा दिया था, जो कारुण्य गुण ईश्वर की अपेक्षा श्रेष्ठ होने पर, करुणा की दृष्टि से भगवान में करुणा है अधिक न गुरु में करुणा है, भगवान का सारा करुणा गुण निकाल करके गुरु के रूप में है, इसलिए गुरु जी ऐसे हैं। तो कहते हैं हमारे गुरु जी करुणा की दृष्टि से भगवान से भी बढ़कर के ये करुणा है, क्यों, कृष्ण जो चीज नहीं देंगे उसको भी ये गुरु क्या देंगे, आश्रय जातीय जो भाव है, सेवा की भावना है, सेवा जो प्रेम है, इसको देते हैं ये गुरु। परमहंस कुल के आदर्श महापुरुष और इस जगत में अपने को परमहंस कहते हैं, उन्होंने अपना स्वरूप छिपा दिया, उनका स्वरूप क्या है, नयन मंजरी, कृष्ण की प्रिया, राधिका जी के प्रिय सहचरी सखी सेविका, यह स्वरूप से उनका है, कितना ऊंचा है, यहाँ पर कि ब्रह्मा और शंकर नहीं जा सकते गोलोक वृंदावन में, वहां पर उनकी नित्य सेवा करते हैं रूप गोस्वामी इत्यादि के अनुगत होकर के, अनुगा मंजरी के रूप में, और उस स्वरूप को छिपा करके इस जगत में बद्ध जीव जैसा बन करके अपने को परमहंस कह रहे हैं, किंतु नास्तिक व्यक्ति इस चीज को समझता नहीं, उस जगत के स्वरूप को छिपा करके इस जगत में मुक्त महापुरुष अथवा परमहंस के रूप में ये इस जगत में अपने स्वरूप को प्रकाशित कर रहे हैं। ओम विष्णु, जो अपने को ओम विष्णु पाद से श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के रूप में अपना परिचय दे दो, या परिचय देना उनके लिए कैसा है?
वंचना
करना है। कहां वो इतना उच्च और अपने को जगत में परमहंस कह रहे हैं, इसलिए परमहंस से बहुत ऊंचा भाव। संक्षेप में विश्ववासी उनको श्रील प्रभुपाद के नाम से जानते हैं, परिचित हैं। जिनका पांडित्य और प्रतिभा समग्र भारत में क्यों समस्त विश्व को विमोहित किया, कोई पाश्चात्य देश के बड़े भारी दार्शनिक कलकत्ते में आए थे और प्रभुपाद जी का भाषण हो रहा था। वो भारत के विभिन्न शहरों से घूम करके आए थे, आकर के प्रभुपाद जी का भाषण सुना। गुरुजी देख रहे जी कौन कैसा सुन रहा है, वो गेट पर खड़े होकर के सुन रहे थे बैठ करके। तो जब वक्तिता हो गई तो उससे पूछा, आपने कैसा सुना? बहुत ही बढ़िया, ऐसा अंत तक मैंने जीवन में नहीं सुना। तो गुरुजी ने पूछा से आपको इसमें से कौन सी बात इनकी अच्छी लगी जो आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं? तो हमारे समझ में कुछ आया ही नहीं, तो इसमें कौन सी बड़ी भारी बात हुई? तो बड़ी भारी ये बात हुई, विश्व में ऐसा कोई विद्वान नहीं है जिनकी बातों को मैं नहीं समझ सकता, खूब आसानी से समझ जाता हूं, बल्कि मैं भी जानता हूं कुछ, किंतु इस महापुरुष की कोई बात भी हमारे समझ में नहीं गई। ये क्या कर रहे हैं?
वो अंग्रेजी लोग अंग्रेजी भाषा में प्रभुपाद बोलते हैं, उनका मातृभाषा अंग्रेजी है,
अंग्रेजी में ही बोल रहे थे तभी उसके समझ में नहीं। वो आएगा कैसे? पद्म ज्ञान पर तत्व इत्यादि जब नाम लेंगे तो उनके समझ में क्या आएगा? कोई समझ में नहीं आएगा। इसलिए ऐसा विश्व में कोई भी दार्शनिक नहीं था जो इनकी प्रतिभा से पराजित न हो गया। मैं अपने को समझता था, मैं अपने को कह रहा हूं, मैं बहुत कुछ समझता हूं। तो गुरु जी का एक दिन हम अपने आने के करीब करीब 10-15 वर्ष बाद नवद्वीप परिक्रमा में मैं गया था यहां से, तो गुरु जी उस दिन भाषण दे रहे थे, तो मैं उनके भाषण परी करीब समझने की चेष्टा करता था, समझता भी था, किंतु उस दिन एक अद्वैतवादी पंडित आ गया सभा में और गुरु महाराज जी का भाव भी बदल गया एकदम, अद्वैतवाद का खंडन करने में लग गए और इतना उच्च कोटि का वो दार्शनिक भाषण उन्होंने दिया जो मेरे संबंध में समझ में कुछ भी नहीं आया, मुझको नींद आने लग गई। तो मैंने सोचा जैसे मुझको अभी मानता कि मैं सब समझता हूं, किंतु आज एक बात भी उनकी समझ में नहीं आई। तो गुरु जी भी कैसे बड़े भारी दार्शनिक थे, और ये सब लोग जो थे ना उस समय के बड़े बड़े पंडित, नेमी महाराज, वो भारती महाराज इत्यादि, श्रीधर महाराज और सब बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े विद्वान अगा विद्वानों में वो एक थे बाबा जी निरक्षर, प्रभुपाद के शिष्य थे
मुकुंद विनोद बाबा जी।
तो सब लोगों को बुलाते थे विनोद, गुरु जी को बोले विनोद, और वो गोड़ी मठ का
अनंत
वासुदेव आनंद बाद में सुंदर आनंद सुनो, और तीर्थ महाराज का जो नाम था पहले
कुंज बिहारी,
कुंज बिहारी सुनो, सब लोग एक रकम है बुलाते थे। कजाज प्रभुपाद ने क्या कहा तो सब लोग कहते थे कौला पूछे छो तुम्हारा, तुम लोग कुछ भी समझाई नहीं। अभी भी तुम लोग प्रभुपाद जी का प्रबंध पढ़ो, बहुत दिनों तक पढ़ने नहीं पढ़ने से और गुरु वैष्णव का अनुगत्य में नहीं सुनने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। भक्ति बोले ठाकुर की भाषा सहज है, सरल है, किंतु इनकी भाषा बड़ी कठोर दिखती है, किंतु इसका अर्थ दूसरा नहीं होगा, एक ही अर्थ होगा। आप भक्ति विनोद ठाकुर की दूसरा भी अर्थ कर ले सकते हैं उसमें से, किंतु इनका सीधा साधा है एकदम, है एक भाव, किंतु भीतर में प्रवेश करना बड़ा भारी कठिन, एक एक पेज के एक एक सेंटेंस होंगे, समझ में नहीं आएगा, साधारण आदमी तो नहीं समझेगा। अब हम लोग कुछ कुछ समझने की चेष्टा करते हैं, पूरा तो आता नहीं किंतु फिर भी चेष्टा करते हैं। ऐसे दार्शनिक प्रभुपाद जी थे, तो वो कहते हैं उस समय समग्र जगत में लोग इनके पांडित्य और ये सबसे दार्शनिक विचारों से सभी लोग पराभूत थे। कोई भी आता था तर्क करने के लिए तो बैठता था, वो अपने आप बोलते थे, अपने आप समाधान हो जाता, फिर उनसे बातचीत नहीं करता था। गुरुजी का भी ऐसा था, कोई भी आएगा प्रश्न करने की जरूरत नहीं, जिनकी युक्तियां वज्र के समान कठोर, विरोधी संप्रदाय के लिए सतत भय का कारण उत्पन्न करते, भयभीत लोग हो जाते थे उनकी युक्तियों को सुन करके, शास्त्रीय विचारों, नए नए विचार। सनातन गोस्वामी ने हरिभक्ति विलास लिखा और उसमें लिखा ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय इन तीनों का उपवित होता है, किंतु यदि कोई व्यक्ति श्रद्धालु हो तो जिस कुल में भी उत्पन्न हो, वर्ण के आश्रम के बाहर शंकर, शंकर माने क्या है,
दो वर्णों का मिश्रण से अनुलोम प्रति,
अथवा अंत्यज वर्ण का भी हो, किसी भी कुल में हो, श्रद्धालु हो तो वो हरिनाम दीक्षा ले सकता है, ठाकुर जी का पूजा अर्चन कर सकता है, यहां तक कि संन्यास भी ले सकता है, किसी भी जाति का वर्ण का हो सभी लोग ले सकते, यहां तक कि महिलाओं में भी वो गुण होंगे तो जीव मात्र के लिए ये सब है, महिलाएं भी
ब्रह्मचर्य
जितना मंत्र है वो सब ग्रहण कर सकती हैं, ठाकुर जी की शालग्राम की सेवा कर सकती हैं, इसके पहले ये सब मना था, किंतु भक्ति विनोद ठाकुर नहीं है हरिभक्ति विलास में ये दिया गया है, कोई भी व्यक्ति हो विष्णु मंत्र में दीक्षित होकर के, कृष्ण मंत्र में दीक्षित होकर के, यहाँ तक कि महिलाएं भी और अंतज वर्ण में भी उत्पन्न होना वाला व्यक्ति, और इन तीन वर्णों की द्विजों की तो बात ही क्या है, शालग्राम के भी विष्णु वैष्णव सबकी सेवा वो करने के लिए जुटते हैं, ये सब निकला है। किंतु भक्ति विनोद ठाकुर का आरंभ करो वहां से सनातन गोस्वामी महाप्रभु से, और भक्ति विनोद ठाकुर तक नीच जातियों को, निम्न जातियों में श्रद्धालु बहुत से होने पर भी उनको जगपेवित नहीं कराए, नहीं दे सके संन्यास की बात, तो बहुत दूर की बात है, संन्यास तो दिया ही नहीं, यहां तक कि और महिलाओं को भी सालग्राम शिला में अधिकार है, उनको ठाकुर घर में जाकर के वो पूजा अर्चन करें, समाज में ऐसा आदमी कोई नहीं उत्पन्न हुआ, कह नहीं सकता था, भक्ति विनोद ठाकुर तक भी किसी ने ऐसा अधिकार दे करके ऐसा नहीं किया, या निम्न जातियों को भी जनेऊ दे करके और ठाकुर जी के स्वामी नहीं लगा सके, ये पहले महापुरुष है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, इन्होंने दैव वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा की, ये पहले व्यक्ति, इन्होंने कहा कि स्त्रियां भी शालग्राम शाला पूजा करने के अधिकारी हैं, वो भी जीव हैं, इनको भी भगवत भक्ति में अधिकार है, जीव मात्र का भगवत भक्ति में अधिकार है, किंतु ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने पर भी यदि उनमें श्रद्धा नहीं है, मांस इत्यादि खाते हैं, कोई गुण नहीं है तो ठाकुर जी की पूजा करने के अधिकारी नहीं है। गोस्वामी भी गोस्वामी नहीं कहलाएगा यदि भगवान की भक्ति नहीं करता है और उसमें इंद्रियों को जीत करके भगवान की सेवा में नहीं लगा। वो गोस्वामी नहीं है, वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं। केवल सूत्र से ही ब्राह्मण नहीं हो जाएगा, केवल गोस्वामी कुल में जन्मने से ही वो गोस्वामी नहीं हो जाएगा, उसमें गुण चाहिए। ये इन्होंने इसलिए कोई कहे उसके बात नहीं सुनना चाहिए, वो लोग कवि के चर हैं। जीव गोस्वामी ने कहां कहां जीव गोस्वामी के बात को उलाट करके उन्हीं का बात लेकर के और उसका मैं एक दूसरा शब्द लगा दिया और उसका अर्थ ही बदल दिया। हमने देखा इसका विचार एक देखा सुंदरानंद जी का, कौड़िया तीन ठाकुर नहीं अचिंत भेदा भेद, तो उसमें लिखा जी जी गोस्वामी ने लिखा है जी गोस्वामी ने ऐसा लिखा है कि हम लोग अद्वैतवादी हैं कि क्या ऐसा ही है विचार। हमने जी गोस्वामी का तत्व संदर्भ लिया, ओ इसमें जो मध्य और उनके शिष्य परंपरा के जितने भी विद्वान हैं कौन नाम उसमें दिया है उनके विद्वानों का परंपरा से उनके विचारों को हम ग्रहण करके वृद्ध वैष्णव और उनमें भी मध्वाचार्य और मध्वाचार्य के शिष्य परंपरा में वो है ना जयतीर्थ है
विजयध्वज
है और सब है। इन सब विचारों को विचार लेकर के हमने ये सब ग्रंथ को लिखा है। उनमें उन्होंने कहा जैसे इनके विचारों को हमने नहीं लिखा है ऐसा लिखा है और लगा दिया उसमें। इतना बड़ा भारी थोड़ता और उसको एकदम उल्टा मैंने देखा जी सारी ये तो महाडकैत आदमी है। गुरु जी कहते हैं वो ठीक है, इसलिए उन्होंने पुस्तकें सब छापी वृंदावन में संस्कृत में और उसका पाठ भेद करके एकदम उलट उलट करके किस लिए केवल इसलिए कि मध्वाचार्य जी के हम समुदाय महाप्रभु जी स्वयं संप्रदाय को सहस्त्र संप्रदाय के आचार्य हैं। गुरु जी ने कहा जाए तब यदि महाप्रभु जी स्वयं आचार्य हैं तो एक आचार्य हैं, आचार्य के रूप में आए। भगवान का काम आचार्य गिरी करना नहीं है, संप्रदाय बनाना नहीं है। यदि ऐसे ही बात होता तो नारायण संप्रदाय होता,
कृष्ण संप्रदाय,
कृष्ण संप्रदाय होता, रुद्र संप्रदाय होता, ऐसा होता राम संप्रदाय होता, ऐसा नहीं होकर के वैष्णव आचार्यों के नाम पर उनके नाम है। जैसे निम्बार्क संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय, ये उपासना की दृष्टि से इन पर इनके नाम लिखे गए। इसलिए गुरु महाराज उस समय यदि नहीं आते ना तो हमारा संप्रदाय ना जाने उड़ा देते ना जाने क्या कर देते। इसलिए वहां पर ये सब गुरु महाराज जी की विशेषता ये दिखलाई पड़ती है। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज परम निरपेक्ष वैष्णव थे अपने समय के। उनका चित्र है आंख से नहीं देखते थे, कीचड़ जमुना का और आधा कुंड का जमुना का मिट्टी खा लेते, किसी से कुछ नहीं लेते, निरपेक्ष वैष्णव। हम लोग तो आजकल मथुरा वृंदावन में भी जमीन खरीद रहे हैं और नवदीप में और मठ अपना कर रहे हैं। ये किसका मठ है? हम लोगों का। एक आदमी उन्होंने उनसे कहा बाबा जी महाराज आप कृपा कीजिए नवदीप में हम एक कट्ठा जमीन ले करके और यहीं पर हम एक छोटा सा भजन कुटी बना करके भजन कर। एकदम बिगड़ गए। ओ तुम नवदीप की एक कट्ठा जमीन ले लेगा? विश्व ब्रह्मांड को बेच देने पर भी अनंत कोटि वृंदावन की और नवदीप की एक धूली कणा का भी कोई मूल्य नहीं दे सकता और उसको तुम खरीद करके भजन कुटी अपना बनाएगा? कृष्ण की भूमि में रहने महाप्रभु जी की भूमि में तुम ये इधर उधर केड़ों के नीचे निर्वाह करके भजन नहीं करेगा, तुम भोजन ये सब शांत रहते। वो किसी से मिलते नहीं थे, विषयी लोगों से। बहुत खुश हो दास बाबा जी महाराज, महाराजा जी, महाराज जी आप चलिए वहां पर विश्व वैष्णव सम्मेलनी हो रहा है, कहे तुम हमारे पास में आ जाओ, यहाँ भजन करो, हमारे यहाँ तुम्हारी लंगोटी दे देंगे और खाने पीने का तुम्हारा जीवन भर का हम भाग ले लेते हैं, तुम भजन करो तो किस लिए वैष्णव सम्मेलन नहीं करेगा, नहीं ले जा सके। ऐसे बाबा जी महाराज जी पैखाना अधिक पसंद कर रहे हैं वनस्पत भजन कुटी।
सही किस
हम लोग अनुभव करते, पहले तो अनुभव नहीं करते थे, कोई विषय आता है कि महाराज जी लड़के की शादी नहीं हो रही, महाराज जी लड़का पास हो जाए, लड़की का बर ही नहीं मिल रहा है 4 वर्ष से, हमारी पत्नी बहुत अस्वस्थ है, थोड़ा सा चरणामृत दे दीजिए ठीक हो जाए, हमको भगवत भक्ति हो जाए इसके लिए कोई नहीं आता, बहुत कम। हम तो कहते हैं अब तो वृद्धावस्था आई, रिटायरमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ छोड़ करके यहां पर भजन करो, कोई भी असुविधा नहीं होगी, बाल भी सफेद हो गए, लड़के गाली देते हैं, जाते नहीं, तभी नहीं आते हैं भजन करते। अच्छा कल से भजन करूंगा, वो कल फिर जीवन नहीं, तो वही उनके पास में आते, इसलिए उन्होंने सोचा कि पैखाना में रहना चाहे पखाना का संग करेंगे, वो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट नहीं करेगा, किंतु ये लोग हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे। अच्छे अच्छे मालपुआ ले आएंगे, राबड़ी ले आएंगे, परमान्न ले आएंगे, खीर ले आएंगे, खिलाएंगे, और वो कहां से लाएंगे, अपने एनर्जी से कमाई की हुई पैसे का तो ले आएंगे, तो उनकी एनर्जी कैसी है और बुद्धि कैसे है, कोई बुद्धि हमें आ जाएगी, इसलिए इनका संग नहीं करेंगे। इसलिए वो गंगा के किनारे भजन कुटी छोड़ करके और एक टट्टी जहां पर लोग रहते थे उसी में जाकर के कबाड़ बंद करके उसी में भजन करने लगे। 8-10 दिन क्या 15 दिन तक नहीं निकले, लोग कहते बाबा जी कहां गए, बाबा जी कहां गए, तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पता लगा, जमींदार ने कहा मैं गया था तो बाबा जी हरे कृष्ण 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 करते बड़े जोर से हरिनाम करते थे, धीरे धीरे नहीं, मन में जैसे करते हैं ऐसे नहीं, मन चंगा तो कठौती में गंगा है, मन में ही भक्ति करनी चाहिए, दिखलाने की क्या जरूरत, भगवान क्या बह रहे हैं जो नहीं सुनेंगे, कितने तरह के तर्क वितर्क लोग करते हैं, किंतु वो जोर से नाम करते, यहां से 1 माइल का दूर तक आदमी गंगा उस पार का व्यक्ति भी सुन ले, तो जमींदारनी ने जाकर के चेयरमैन से कहा, चेयरमैन ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा, वो सुपरिंटेंडेंट और पुलिस को लेकर के और वहां का डिप्टी कलेक्टर या मजिस्ट्रेट, बाबा जी महाराज कबाड़ खोलिए, आपको हम भजन कुटी दूसरी जगह बना देते हैं गंगा के किनारे, अच्छी तरह से आप वहां पर भजन कीजिए, अंततः एक बार भेंट कर लीजिए, आपको क्या सुविधा है जो यहां पर बैठे हैं, वो क्या समझेंगे क्या असुविधा है, विषय लोगों का संग करने की अपेक्षा पैखाना के पास न रहना बल्कि वो ठीक है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, इसलिए वो बैठे हैं, किंतु ये उनको क्या समझे, बहुत जब जिद किया तो उन्होंने कहा मेरी तबीयत बहुत अस्वस्थ है, मैं कबाड़ नहीं खोल सकता, ऐसे मानो उठने की भी शक्ति नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिंटेंडेंट कुल हम लोग कहते क्या करते, हम तो थर लाते हो जल्दी से दौड़ करके वहीं से जाकर के ले आते और खूब खिलाते खिलाते बैठाते आदर करते, उन्होंने उनसे बात नहीं की, 1 घंटा तक रगड़ते रहे कुछ भी नहीं, जब सुने तो अंत में लोग चले। ऐसे महात्मा के पास में गुरु महाराज जी जब प्रभुपाद के शिष्य हुए तो गुरु महाराज जी को आदेश दिया कि जाओ खोटूसो दास महाराज क्या दर्शन कराओ, तो गए तो वो पिसीमा थी और नेमी महाराज थे, उस समय में संन्यास ने लिया था, उनका नाम गौर गोविंद
दशाधिकारी,
मैंने
संस्कृत टाइटल
संस्कृत टाइटल को बहुत बड़ा था, बड़े विद्वान संस्कृत के थे, संस्कृत में नरगल बोलते थे, तो वो बड़े बड़े विद्वत सभा में उनको प्रभुपाद भेजते थे, तो वो इन सब लोगों के साथ में गए थे। तो इन लोगों ने कहा, प्रभु महाराज जी आप जरा, बाबा जी महाराज जरा दरवाजे खोलिए, हम दर्शन के लिए आए। तो कुछ नहीं, पांच सात बार बोला तो कहे हम तबीयत खराब है, मैं नहीं उठ सकता। तो गुरु जी ने कहा, हमारे सरस्वती ठाकुर जी ने हमको आपके दर्शन के लिए भेजा है। अच्छा अच्छा अच्छा, उठ करके खड़े हो गए, ओ सरस्वती ने भेजे, बस दरवाजा खोल दिया और गए। गुरु महाराज जी ने प्रणाम किया, कहे तुम्हारी समस्त जितनी आपत्ति है जीवन की, वो समस्त हम मैं ग्रहण करता हूँ, तुम भगवत भजन करो। बस ऐसे ऐसे बात। गुरु महाराज जी रोते थे, इस महाप्रभु के महापुरुष के आशीर्वाद से हमारे ऊपर में जीवन में भगवत भक्ति प्रचार में बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियां आई। आसाम में हम लोगों के साथ नहीं आई, चुचुड़ा में मैं था वहां आई, कलकत्ते में आई। विशेष करके मेरे आने के बाद में ही चुचुड़ा में बहुत, आसाम में इधर उधर में जहां भी उनके साथ में गया, देखा जी कैसी कैसी विपत्तियां आ गई, साधारण आदमी सह नहीं सकता। वो सब पते थे, रोते थे प्रभु, ये गौर कुशोदास जी महाराज की कृपा से और भी प्रभुपाद की कृपा से उन्होंने कृपा की, नहीं तो हमको क्या जानते हैं वो क्या कृपा। झट दरवाजा खोल करके उन पर आशीर्वाद दिया, ये लोग प्रसन्न होकर के फिर तभी से उन्होंने कहा कि हम इसीलिए निर्भीक हैं, सत्यम ब्रुआ प्रियम ब्रुआ मां ब्रुआ असत्यम व प्रियम, ये जगत की नीति है। क्या जगत की नीति है? सच बोलो किंतु प्रिय सत्य बोलो, जो प्रिय सत्य है, किंतु कभी भी असत्य जो है अप्रिय सत्य है वो मत कहो। गुरु महाराज जी का विचार करते थे जी, हमारा ऐसा विचार नहीं, हमारे शास्त्रों का विचार नहीं है। सत्यम ब्रुआत अप्रियम सत्यम ब्रुआत, यदि अप्रिय भी है तो बोलो। क्यों? साधु अपने वचन रूपी कुठार से लोगों के हृदय के बंधनों को और बुराइयों को छेदन कर देता है। तो इस लोग क्या है,
संत एवा सचिंदन्ति
मनोव्यासंग उक्ति, अपने वचनों से असत पुरुषों के हृदय के जितने भी ग्रंथियां हैं उनको काट देते हैं। हम लोग प्रिय सुनने के लिए आदि हैं, हमारे कोई दुर्गुण बतलाए ना तो नहीं सुनेंगे, झगड़ा लड़ाई करेंगे। हम जो चाहते हैं वही गुरु जी कहें, गुरु जी कहते नहीं तब तुम गुरु बन करके रहो। गुरु के पास आने की क्या जरूरत है? तुम्हारे अंदर में जो छिद्र हैं, दोष हैं इन सबको वो कहेंगे। हम भी ऐसा कभी कभी कह देते हैं, कभी कभी किसी को बुरा मत मानना कभी आप लोग। संत पुरुषों का यही, हम लोग उनके साथ रहे हैं ना, इसलिए थोड़ी थोड़ी छीट हम लोगों पर भी आई। हम भी कोई बात होता है तो बाजार में ही ढिढोरा मैंने ढोल बजा करके फोड़ देते हैं, कहे ये दोष है ऐसा, उसे घबराना नहीं चाहिए। इसलिए गुरु जी कहते हैं ये सब ही असत्य है। जगत क्या है? नित्य सत्य नहीं है, नश्वर है। हम लोगों की विषय वास्तव में रुचि है। संत क्या कहते हैं, जब तक इनमें रुचि रहेगी तब तक भगवान की तरफ में हम नहीं जा सकते हैं, एक गंध भी रहेगी तो नहीं। इसलिए इन सबको छेदन करके भगवान के तरफ में चलना चाहिए। बहुत से लोग झगड़ा करते हैं, गृहस्थ बड़ा है, कुछ लोग कहते हैं त्याग बड़ा है, संन्यास धर्म बड़ा है, झगड़ते हैं। साधु संत पुरुष कहते हैं भाई झगड़ने की जरूरत नहीं है, अपने अपने स्थान पर सभी बड़े हैं, भगवान से प्रीति करना चाहिए ना? भगवान से प्रीति रखना चाहिए, जो कुछ करो भगवान के लिए करो, ये तो करना पड़ेगा ना, अन्नाभिलाषिता दूर करना पड़ेगा और ज्ञान कर्मादि दूर करना पड़ेगा, अच्छा यदि तुमको संसार की वासना ही नहीं है किसी को, और किसी को संसार की वासना है, दोनों में कौन श्रेष्ठ है? कौन श्रेष्ठ होगा भाई? वासना नहीं है वो श्रेष्ठ होगा। तुम गृहस्थ में क्यों गया? गया क्यों? तुम सब प्रकार से बचपन से लेकर के भगवान का ही भजन करो, उन्हीं के लिए करो, कृष्ण के लिए अखिल वृत्तियों को चेष्टा परायण हो, और कृष्ण के लिए अखिल भोग का त्याग करो। जब भोग की कोई बात ही नहीं रही, संसारी कोई आसक्ति ही नहीं रही, संसार झूठा स्वप्न है और दुख का कारण है, तुम क्यों गया? इसलिए लोग झगड़ा करते हैं, किंतु झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। श्रेष्ठ तो जरूर वह है जो सब कुछ त्याग करके भगवान के लिए सेवा करता है, किंतु सबके लिए संभव पर नहीं है, इसलिए यथा स्थान में रह करके भगवान का भजन करो। स्थाने स्थिता, किंतु ऐसा यदि कोई करता है सुखदेव और नारद की भांति, या घर में ही श्रीवास पंडित की भांति, लड़का मर गया कीर्तन हो रहा है उसको बंद नहीं करने दिया, तो गृहस्थ वैष्णव भी हो भक्त भी हो तो ऐसा हो। जैसे कि अर्जुन भीम नकुल सहदेव, लड़के मारे गए सब, आंख में आंसू नहीं आए, द्रौपदी भी रो रही है, किस लिए? कृष्ण के लिए। ऐसा होना चाहिए, त्यागी हो तो ऐसा और गृहस्थ। इन वचनों के द्वारा गुरु जी कहते हैं सत्यम ब्रुयात, यदि वो अप्रिय है ताहले क्या करो? अप्रिय भी है तो सत्य ही बोलो, प्रिय भी है तो सत्य बोलो, क्योंकि ये कर्तव्य है। और नहीं तो असत्य यदि अप्रिय है, सत्य यदि अप्रिय है तो मत कहो, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसी को पूज्यपाद भान महाराज ने भी अब इसमें संग्रह किया है। ऐसा ही करते हैं, इसलिए साधु गुरु वैष्णव के आत्मकल्याण जनक कटु वाक्य और समालोचना भजन के विषय में बाधा विघ्न को दूर करती है, इसलिए इनको श्रवण करने का अभ्यास रखना चाहिए, नहीं घबराना चाहिए, इसी से ही हमारा कल्याण होगा। ये भजन की परिपाटी है। हमारे रूप गोस्वामी ने जीव का गोस्वामी का दोष नहीं होते हुए भी किस लिए किया? जिनको शोधन करने की जरूरत नहीं थी वो तो ठीक है, किंतु जगत की शिक्षा के लिए किया, और जीव गोस्वामी ने उसे ग्रहण कर लिया। इसी तरह से चलना चाहिए। गुरु जी के अद्भुत अद्भुत युक्तियां होती थी, कितना बजा गुरु जी की अद्भुत अद्भुत युक्तियां हमने कभी नहीं सुनी। उन्होंने कहा भागवत इत्यादि ग्रंथों में देखा जाता है ब्रह्म परमात्मा और भगवान ये तीन है, तो यदि तीनों में ब्रह्म ही श्रेष्ठ है, क्योंकि पहले ब्रह्मा शब्द आया है, इसके बाद में परमात्मा आया, इसके बाद में भगवान, इसलिए श्रेष्ठ वस्तु का नाम हमने पहले लिया, किसका? ब्रह्मा। और इसके बाद में
परमात्मा,
और इसके बाद में भगवान लिया, इसलिए भागवत में ब्रह्म को ही स्वीकार किया गया। गुरु जी कहते हैं तुम्हारी अतल पर पत्थर पड़ा है, खाक पत्थर तुम नहीं समझता। कैसे? यदि ब्रह्म ही श्रेष्ठ है तो परब्रह्म क्यों शास्त्रों में लिखा? परब्रह्म परम भगवान इत्यादि कृष्ण के लिए गीता में भी लिखा, और यह भी बतलाया ब्रह्मण प्रतिष्ठा हम, कृष्ण कहते हैं ब्रह्म का भी मैं प्रतिष्ठा हूं, और सबसे बड़ी बात परब्रह्म क्यों लिखा? तथा ब्रह्म से भी श्रेष्ठ कोई वस्तु है? आत्मा से भी श्रेष्ठ है कौन? परमात्मा। इसलिए आत्मा श्रेष्ठ तत्व नहीं है, आत्मा को भी वो लोग ब्रह्म कहते हैं, तो परमात्मा क्यों लिखा गया? किंतु भगवान के पहले कहीं भी परम नहीं है, इसलिए भगवत तत्व ही सबसे श्रेष्ठ है। ब्रह्म और परमात्मा उनके एक आभास का नाम, उनके अंग की ज्योति अर्थात ज्ञान, विकृत ज्ञान का प्रतिफलन है, चिद अंश का प्रतिफलन तत्व ये ब्रह्म है, निर्विकार निर्विशेष निर्गुण निरंजन। और परमात्मा जो साक्षी के रूप में प्रत्येक जीवों के अंदर में भगवान के अंश के अंश के कला के विकला ये फिरोदशाई ये है परमात्मा। और कृष्ण कौन है, इन सब के अंशी के अंशी के अंशी के भी ऊपर चले गए, सर्व कारण कारणम वो कृष्ण ही, ये भगवान। भगवान का भी दो रूप बतलाया, एक भगवान एक स्वयं भगवान, नारायण राम नृसिंह कल्कि वामन ये क्षीरोदशाई तक ये सभी भगवान हैं, किंतु कृष्ण ही स्वयं एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु ये स्वयं भगवान ही पर ब्रह्म है और परम परमात्मा है और वही मूल ये गुरु महाराज जी की शक्ति। गुरु महाराज जी शास्त्र का प्रमाण बहुत कम लेते थे और श्लोक बहुत याद नहीं रखते, युक्ति तर्क विचार ये सब लेकर के नवदीप में ब्रह्मचारियों ने, मैं तो मथुरा में था, हमने सुना त्रिविक्रम महाराज जी और सब जितने थे वो सब बामन महाराज जी सब लोगों ने कहा जी हम लोग वेदांत की व्याख्या कार्तिक महीने में एक महीना आप कीजिए हम लोग सुने। तो गुरु महाराज ने वेदांत आरंभ किया। नवदीप का एक महा ब्रह्मवादी बहुत बड़ा पंडित वो सुनने के लिए आने लगा, तो वो सब सुनता था। तो जबकि आनंद में वो कोई पाद है, वो आनंदमय अधिकरण जब आया आनंदमय अभ्यास तो उसी में वो कथा से ब्रह्म जो है निर्विकार निर्विशेष निरंजन
निरंजन निर्लय
वो आनंदमय है। गुरु जी ने कहा कि उस ब्रह्म के लिए नहीं कह रहे, ये कृष्ण ही जो पर ब्रह्म है स्वयं भगवान है उनके लिए ये आनंदमय है। तुम्हारे जो ब्रह्म है वो कैसे हैं, निर्विकार निर्विशेष निरंजन अकाम माने जितना और लगाया जा सकता वो सब है, इसलिए तुम्हारे ब्रह्म आनंद में नहीं है। वो कहते ब्रह्म हमारे आनंद में है। अच्छा तो सुनो, मैं कहता तुम्हारे ब्रह्म जो है वो पैखाना बिस्टा में है, पैखाना में है। तो छीछी कर रही आप ऐसे कहो, आप इतने बड़े विद्वान होकर के करें तो मैं क्या कहूं। तुम यदि पैखाना में मिलकर के पैखाना हो जाएगा तो सात दुर्गंध तुमको नहीं मिलेगा, इसलिए तुम ब्रह्ममय हो गया। तुम आनंदमय किस लिए बनना चाहता है, इसलिए कि उसमें आनंद है। तो जिसमें कोई आनंद ही नहीं है, या कोई चीनी है, चीनी चीटी खाने गई मधु पीने के लिए गई और वो उसमें लिपट गई मधु में, और लिपट करके क्या हो गई मधु बन गई खूब, मधु तो बनी नहीं, क्या हुआ उसके अंग पतंग टूट फूट करके वो घुल मिल गए चीटू उसमें मधु में, तो वो आनंद भोग कर रही है ना जो बहुत मीठी मधु है। और यदि कोई पैखाना में ही चीटी चली जाए और वो चीटी में पैखाना में सड़ गल जाए उसके अंग पतंग, तो वो चीटी भी आनंद उसका लेगी ना दुर्गंध उसको आएगा। हम लोग के यहाँ प्याज लहसुन पास पर कभी कभी बनाते हैं, दुर्गंध के मारे रहा नहीं जाते, उनको लगती है जो खाते पीते हैं उनको बहुत ही अच्छा लगता है। एक मछली बचने वाली थी, टोकरी लेकर के मछली बेचने के लिए शहर में जाती, तो एक दिन वो बेच करके लौट रही है, बड़ी थकी हुई है, बहुत थक गई। तो वो बगीचे में, बगीचा सुंदर था, उसमें फूल खिले हुए थे बेली चमेली ये सब फूल, और उसका सुगंध आ रहा था। तो उसने सोने की बहुत चेष्टा की किंतु नींद नहीं आई। तो उसने क्या किया, सो करके और उस टोकरी को जिसमें मछली का गंध आ रहा था उसको अपने मुख पर ऐसे औंधा दिया और पानी का छींटा दे दिया और उसको खुशबू आने लगी है, बस हो गया। तो यदि कोई पैखाना मिलकर के पैखाना ही हो जाए तो सदुर्गंध आएगा थोड़े, इसलिए तुम्हारा ब्रह्म टट्टी में है, तुम प्रमाण करो जैसे वो आनंद में है। कुछ तरह से नहीं प्रमाण कर सका, अंत में कहा जैसे क्या
महातेंदुड़
नहीं अच्छा बंगला का सब मैंने किसी तरह से वो प्रमाणित नहीं कर सका, अंत में हाथ झुझुला करके और वहां से उठ करके चला इत्यादि का कोई भी चीज श्लोक प्रमाण इत्यादि बहुत कम बोलते थे, भाषण भी ऐसे देते थे। भक्ति के संबंध में एक समय में एक आदमी ने चिट्ठी लिखा गुरु महाराज जी का शिष्य आसाम से, आसाम प्रदेश से चिट्ठी लिखा, गुरु जी हमको जाति से इन लोगों ने बाहर कर दिया है, मैंने हरिनाम लिया और यज्ञोपवीत धारण किया। कहते कि अरे तुम यज्ञोपवीत कैसे लिया और तुम हरिनाम कैसे करेगा, तुम गायत्री का मंत्र उच्चारण नहीं कर सकता है, तुम हमारा समाज का विरोधी काम किया है, तुम हमारा हुक्का नहीं पीता है, हम लोग के साथ में बीड़ी नहीं पीता, हमारे साथ में बोतल नहीं पीता है, इसलिए या तो तुम हमारे साथ में रह करके सब काम करो, हमारे साथ में हुक्का पियो बीड़ी पियो और हम जैसा करते हैं वैसा करो, और नहीं तो तुमको समाज से बहिष्कृत कर दे। उनका कुआं बंद कर दिया, विवाह शादी बंद कर दिया,
नाई धोबी
सब बंद कर दिया। अब तो नाई धोबी तो का सब अपने आप कर ले, जैसे अब हम लोग भी नाई का काम कर रहे हैं, नाई की जरूरत ही नहीं, धोबी का काम भी, अब पहले ये सब था प्रथाएं थी, अब नाई भी नहीं आएगी तो क्या होगा, क्या जरूरत है, दो पैसे में किसी को रख लेंगे नौकर, नाई का काम कर देती है, चौक पुराना है, हम अपनी बेटियां हम अपने बहुएं सब पूर लेंगे, चौक पुरने की जरूरत ही नहीं है, ये सब पुरानी ठकोस लाए थी ना? इसको जरूरत क्या है, बिना उसके विवाह नहीं हो जाएगा, एक फूल की माला डाल दी बस हो गया, रजिस्ट्री विवाह करा लिया, क्या नाइन की धोबी की ये सब क्या जरूरत है, पुरोहित की क्या जरूरत है। तो वैसे उनका बंद कर दिया, गुरु जी ने कहा उनको पत्र लिखा, बहुत अच्छा हुआ, कुसंग अपने आप तुमको छोड़ दिया, अब इसे अधिक क्या, तुम छोड़ नहीं सकते थे और कुसंग ने तुमको छोड़ दिया, बहुत अच्छा हुआ, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, शक्ति देता हूँ, तुम कोई चिंता मत करो, तुम भगवत भजन करो ठाठ के साथ, इसके बाद में जो आएगा हम देखेंगे और सप्ताह के तुम वहां पर चलेंगे, हम लोगों के साथ में बीस करीब करीब हम लोग चार पांच छ आठ दस आदमी हम लोग सन्यासी थे और ब्रह्मचारी, कुल 20-25 ब्रह्मचारी और बड़े बड़े गांव के अच्छे अच्छे सब व्यक्ति, वो भी 50 सैकड़ों आदमी लेकर के गुरु महाराज जी प्रचार करते थे इस गांव से उस गांव, और वहां बड़ी बड़ी सभाएं होती। एक बार गुरु जी ने कहा जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, मदिरा खाते हैं, मांस मछली खाते हैं, सदाचार पूर्वक नहीं रखते, उनका मुख नाली है, गंदी सी नाली जिसमें ये सभी चीजें बहती हैं, बस बहुत से पत्थर और ये सब चलाने लगे लोग, और उन्होंने उल्टा सुल्टा प्रश्न करना आरंभ किया, कहिए तुम्हारे पत्थरों और ईंट से हम लोग डरने वाले हैं, अरे अधिक से अधिक 10-20 ईंटें लगेंगे या तो मर जाएंगे, किंतु हम लोग समाज के लिए आए हैं कल्याण करने के, आप नहीं सुनेंगे और 10 आदमी सुनेंगे, 20 आदमी, 50 हजारों आदमी सुनेंगे, यहाँ पर हजारों आदमी आए, इनका भविष्य बिगाड़ने के लिए हम नहीं। अंत में गांव वाले सब गुरु महाराज जी के तरफ से तैयार हो गए और ये लोग भी पत्थर तत्थर लेकर के कहा जैसे यदि खबरदार यदि चलाया तुमको कोई प्रश्न पूछना है तो पूछो, तो उन्होंने प्रश्न कहा जो प्रश्न का उत्तर दीजिए, चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं है, अप्रमाणित कीजिए भगवान, बस साथ ही साथ में त्रिविक्रम महाराज जी थे उनके पास में नोट डायरी था, गुरु जी ने कहा जी पढ़ो, बस एकदम आरंभ कर दिया, सब थर एकदम लग गई, इस स्तर से प्रचार किया उनके साथ। मेदिनीपुर में भी ऐसे ही हजार प्रश्न करते हैं और हजारों प्रश्न का उत्तर देते हैं सर। इस तरह से ये महापुरुष। अभी मैं सोचा था कि बहुत कुछ कहूंगा,
कल कहेंगे,
किंतु गुरु महाराज जी की महिमा नहीं कह सका। दो एक चार पांच पांच उनकी महिमा अजस्र महिमा है। वो यदि नहीं आते तो यहाँ पर देखो जी एक आदमी भी हम लोग नहीं बैठते। मथुरा भर में या कहां ब्रज में कहां कहां विश्व प्रचार होता है, वो नहीं रहते तो स्वामी जी को संन्यास कौन देता। इस तरह से देखो ये महापुरुष लोग, एक महापुरुष विश्व ब्रह्मांड को उद्धार करता है। देखो उनके प्रति दृढ़ श्रद्धा रखना, उनके उपदेशों को पालन करना, भजन से किसी भी अवस्था में जो गृहस्थ है या त्यागी है वो वहां पर स्थित रह करके कभी भी उनके विचारों से डिफिशिएट न हो, विचारों को लेकर के हम चलेंगे और भजन से कभी भी विच्युत नहीं होंगे। ये इसी का नाम है व्यास पूजा। व्यास देव के विचारों से हम कभी भी एक भी इधर उधर कुछ नहीं होंगे, इसका नाम है। जहां भी जिस रूप में रहेंगे भगवान का भजन करेंगे, दूसरों से भी भजन कराएंगे, इसका नाम है व्यास पूजा। गुरु पूजा, गुरु पूजा किसको कहते हैं, और लोग को भी गुरु के पास में लाए और गुरु उनको भी गुरु बनाए, गुरु जी का संदेश सबको यहां पहुंचाएंगे और सबको गुरु बनाएंगे भविष्य के लिए, इसका नाम है व्यास। पंचाग्रह तो जैसे